आरवी कमरे में आ गई। उसने कंगन उठाए और उन्हें पहनने के बाद जाने के लिए मुड़ गई। ठीक इसी वक्त एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल के बगल वाला डोर खुला, मतलब स्टडी रूम का डोर खुला, और शान ने कमरे में कदम रखा। आरवी को वहां देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बड़ी माँ की पह देने से खुद को अंशिका की माँ समझने की भूल कभी मत करना। वो मेरी बेटी है, कोई रिश्ता नहीं है उससे तुम्हारा, तो उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसने गुस्से में उसे वार्निंग दी। उसकी आवाज़ जैसे ही आरवी के कानों में पड़ी, उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसकी दिल तोड़ने वाली बात सुनकर उसे बाहर कही कड़वी बातें भी याद आ गई थीं। उसने खुद को संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो शान उसे ही गुस्से से घूर रहा था। आरवी ने अब आराम से जवाब दिया, जानती हूँ ये रिश्ता आपकी मर्जी के खिलाफ जुड़ा है। सच मानिए, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना सहना पड़ता। लेकिन अब शादी हो गई है, फिर भी मैं आपसे एक पत्नी होने का कोई हक नहीं मांगती। पर अब से मैं अंशिका की माँ हूँ और ये सच आप भी नहीं बदल सकते। अगर वो आपकी बेटी है तो अब से मेरा भी उस पर बराबर हक है और मैं उससे दूर बिल्कुल नहीं रहूँगी। उसे उसकी माँ की ज़रूरत है और मैं हर हाल में उसकी ज़िंदगी की इस कमी को पूरा करके ही रहूँगी। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस था। उसकी बात सुनकर शान के लबों पर तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने व्यंग्य भरे लहजे में कहना शुरू किया, बहुत अच्छा नाटक कर लेती हो, इतनी शरीफ तुम हो नहीं जितना दिखाने की कोशिश कर रही हो। मुझे तो शक है ज़रूर तुम ही ने उस लड़के को वो सब करने को मजबूर किया होगा। शादी से पहले कितनों के साथ रात गुजार चुकी हो जो सच जानने के बाद वो तुम्हें मंडप पर छोड़ गया, वो भी उस हाल में। शान ने जैसे ही ये कहा आरवी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आरवी ने उसकी बात काटते हुए बेहद गुस्से से कहा, मिस्टर मल्होत्रा, आगे एक और शब्द नहीं। अगर आप कुछ जानते नहीं हैं तो आपको कोई हक नहीं मेरे चरित्र पर कीचड़ उछालने का, और मुझे कुछ कहने से पहले अपने दामन में झांक कर देख लीजिए। एक इतनी बड़ी बच्ची के बाप होते हुए भी रोज़ किसी नई लड़की के साथ रात गुजारते हैं। मुझे तो लगता है ज़रूर आपकी इन्हीं अय्याशियों से तंग आकर अंशिका की माँ आपको छोड़कर चली गई होंगी। उन्हें तो अंशिका को भी अपने साथ ले जाना चाहिए था। आरवी बेहद गुस्से में थी। आखिर शान ने उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी तो वो ये इल्ज़ाम कैसे बर्दाश्त करती। गुस्से में उसके मुंह में जो आया उसने कह दिया। वहीं उसने गलती से शायद शान की दुखती रग पर हाथ रख दिया था, जिससे शान गुस्से से तिलमिला उठा और चीख कर बोला,
शट अप, अगर एक और शब्द कहा तो जान से मार दूंगा तुम्हें। क्यों, जब बात खुद के चरित्र पर आई तो गुस्से से बौखला उठे, और जब बिना सच्चाई जाने मुझे अपने जिस्म का धंधा करने वाली वैश्या करार दिया था तब क्यों नहीं कांपी आपकी जुबान? आपकी इज्जत इज्जत और दूसरों की इज्जत खेल, ऐसे दोगले इंसान होंगे आप, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे तो लगा था कि जो इंसान एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए उससे शादी कर ले वो भगवान का अवतार होगा। एक पल में मैंने न्यूज़ में दिखाई जाने वाली सभी बातों को नकार दिया कि आप वैसे हो ही नहीं सकते। पर नहीं, आप उससे भी बुरे हैं। बाहर वाली लड़कियों के साथ इंसान जैसे मर्जी रहे, पर कम से कम अपनी पत्नी की तो वो इज्जत करता है। पर आपने तो मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। अगर इतनी ही बुरी लगती थी मैं, अगर विश्वास ही नहीं था मुझ पर, इतनी ही गंदगी भरी हुई थी मेरे लिए आपके दिल में, तो क्यों की मुझसे शादी? जीती या मरती अपने शाल पर रहती, यूं घुट घुट कर जीने से तो मर ही जाती तो अच्छा होता। मुझे कहते हैं कि मेरा कोई कैरेक्टर नहीं, जानते ही क्या है आप मेरे बारे में, कोई फर्क नहीं आप में और उस विहान में। वो तो मुझे पाना चाहता था और मुझी को रुसवा कर गया सारी दुनिया के सामने, पर आप तो उससे भी बुरे निकले, सबके सामने मेरा हाथ थाम कर भी मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा कर छोड़ दिया। क्यों की मुझसे शादी नहीं करनी थी ना? मुझे लगा आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, पर आपने तो ये शादी करके मुझे ज़िंदगी भर के लिए एक नर्क से बदतर ज़िंदगी दे दी। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। अब ना तो आपके किसी और एहसान को सहने की हिम्मत है मुझ में और ना ही कोई आरजू ही जिंदा बची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौत से बदतर जिल्लत भरी ज़िंदगी देने के लिए। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। गलती से ही सही पर दो अच्छे काम कर गए आप। उनकी अभागन बेटी से शादी करके मेरी माँ को नई ज़िंदगी दे दी और मुझे इस घर में लाकर मुझे जीने की वजह दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं आपको। नहीं मानते ना आप इस शादी को, तो अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप जैसे घटिया और गिरी हुई सोच वाले आदमी को मैं कभी अपना पति नहीं मान सकती। आज से और अभी से मैं आपसे जुड़े इस रिश्ते को तोड़ती हूँ। ना अब आपका मुझ पर कोई हक है, ना ही मुझे किसी हक की चाह है। नहीं हूँ ना आपके लायक, तो यही सही, अब दूर रहिएगा मुझसे। कोई हक नहीं आपका मुझ पर, और भूल से भी मुझे उन लड़कियों की तरह समझने की गलती मत कीजिएगा जो आपकी बाहों में आने के लिए मरती रहती हैं। ज़िंदगी में एक बार गलती की थी, उसकी सज़ा आज तक भुगत रही हूँ। दोबारा किसी आदमी को अपनी मर्ज़ी के बिना खुद को छूने भी नहीं दूंगी। इसलिए अगर आपने मेरी मर्ज़ी के बिना मुझे छूने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगी आपको, या खुद मर जाऊंगी। नहीं हक किसी का मेरे शरीर पर, तो अब मुझसे दूर रहिएगा। और एक बात, आपने मुझसे शादी करके खुद मुझे उसकी माँ होने का दर्जा दे दिया, और अब ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, खुद आप भी नहीं। वो मेरी बेटी है और मैं किसी को भी मुझे उससे अलग नहीं करने दूंगी। आपकी पत्नी कहलाने का शौक ना मुझे पहले कभी था, ना ही आज है, और ना ही आगे कभी ऐसा होगा। मैं अंशिका की मम्मा बनकर ही खुश और संतुष्ट हूँ, इससे ज्यादा की चाह नहीं मुझे। और एक बात, आपने तो मुझे चरित्रहीन करार ही दिया है, फिर भी आपको इतना बता देती हूँ कि इस चरित्रहीन लड़की की बुरी छाया कभी आपकी बेटी पर नहीं पड़ेगी। उसे सिर्फ प्यार दूंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगी। तो आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी को माँ के प्यार की जरूरत है, वही मिलेगा उसे। उसे आपसे दूर करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चे के लिए पिता कितने जरूरी होते हैं ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हो सके तो आगे से मेरे सामने मत आइएगा, और मेरे बारे में कुछ कहने की तो सोचिएगा भी मत। शादी जरूर की है आपने मुझसे, पर गुलाम नहीं बनी हूँ आपकी, जो आपकी हर बकवास को सर झुकाए सह जाऊं। गलत के खिलाफ सर उठाना आता है मुझे, झुकना नहीं सीखा मैंने। खासकर अगर कोई मेरे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करे तो वो मुझे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। एक बार चुप रहने की गलती की थी, दोबारा नहीं करूंगी। अगर आपने दोबारा अपने मुंह से मेरे लिए ऐसी अनाप शनाप बातें निकाली तो याद रखिएगा कि मैं भी चुप नहीं रहूंगी। वो बेहद गुस्से में थी, आंखें नम थी पर चेहरा गुस्से से लाल था। वो दंदनाते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद कहीं जाकर शांतनु को होश आया और उसकी बातें याद करके उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो भी दंदनाते हुए कमरे में चला गया और उसने कमरे से बाहर जाती आरवी की बाह पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, समझती क्या हो खुद को, क्या औकात है तुम्हारी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की।
अभी तक आरवी उसकी पकड़ से अपनी बाह को आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी बात सुनकर उसने पलकें उठाकर उसकी आंखों से आंखें मिलाते हुए जवाब दिया, जो हूँ वही समझती हूँ, और रही बात मेरी हिम्मत की तो अभी वो आपने देख ही कहा है, अभी तो बस ट्रेलर ही दिखाया है, इतने में ही तिल मिला उठे। अगर दोबारा मेरे चरित्र पर उंगली उठाई तो जो मैं करूंगी वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे कमजोर समझने की गलती भूल से भी मत कीजिएगा, बचपन से अपने लिए खुद लड़ती आई हूँ, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना बहुत अच्छे से आता है मुझे, और उससे भी बेहतर तरीके से आप जैसी घटिया सोच वाले आदमी को लाइन पर लाना आता है मुझे। इतना जो अकड़ दिखा रहे हैं ना, मुझे उसे अपनी जेब में रखिए, वरना अगर मैं अपनी पर उतर आई तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आइंदा से मेरी इजाज़त के बिना मुझे छूने की सोचिएगा भी नहीं, वरना हाथ तोड़कर मुँह में दे दूंगी। उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया, उसे पीछे धक्का देकर सीधे गेट से बाहर निकल गई और जोर से दरवाज़ा उसके मुंह पर दे मारा, तो वो खिसियाकर उनके पीछे भागा, पर बाहर कुछ कदम बढ़ने के बाद ही उसके कदम रुक गए। सामने अंशिका खड़ी थी और आरवी उसके सामने घुटनों के बल बैठी उससे बात कर रही थी। उसकी मुस्कान देखकर शांतनु ने अपने गुस्से को पी लिया, तभी अंशिका की नज़र उस पर चली गई तो उसने मोहिनी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहा, डैडी चलिए, दादी ने आपको और मम्मा को खाने के लिए बुलाया है, आज सब साथ में लंच करेंगे, बिग दादू भी आए हैं। उसकी बात सुनकर शांतनु ने आगे आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए बोला, चलिए डैडी अपनी प्रिंसेस को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। नो डैडी, आज अंशु को मम्मा के हाथों से खाना खाना है, उसने आंखें मटकाते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा। उसकी बात सुनकर शान का गुस्सा बढ़ गया, जिसे उसकी शक्ल देखते ही आरवी भी समझ गई। उसने उसके कुछ कहने से पहले ही कहना शुरू कर दिया, नहीं बेटा, अभी आप डैडी के हाथों से लंच कर लीजिए, मम्मा आपको बाद में खुद अपने हाथों से खाना बनाकर अपने ही हाथों से खिलाएगी, उसने उसे समझाते हुए कहा, तो समझदार अंशिका ने ओके कह दिया। शान ने एक नज़र उसे घूरा तो बदले में उसने भी उस पर से नज़रें न हटाते हुए उसे घूरा। शान ने अब उस पर से नज़रें फेर ली और अंशिका के साथ आगे बढ़ गया, तो वो भी उसके पीछे चल दी।